ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। गुरु महाराज जब अंशी आश्रम में निवास शुरू हो गया भली प्रकार, तो क्षेत्र में डॉक्टर था ही नहीं और जंगली जगह बड़े बड़े मच्छर छछे टांग के मार दे डंक तो मलेरिया तो होना ही होना था। गांव में छह महीने से बुखार आ रहा है, लोग खटिया से लग गए, हड्डी फसली एक हो गया, इलाज कुछ नहीं। तो जंगली इलाज था कि उपवास करो, तो मलेरिया बुखार और खुराक खाना नहीं पाई तो खुदे भाग जाई, भूखे मरेगा तो छोड़ दे। तो लोग गांव गांव दो चार छह आदमी पड़े रहे। जब सुना कि परमहंस जी कोई महापुरुष आ गए तो भीड़ लग जाए। महाराज कहें खो विभूति और एक चटकना मार दे हाथ से, पापी कहीं का पाप तुम लोग करो भोगे बाबा जी, चल भाग यहां से। कब है बुखार का नंबर बोले महाराज परसों, कोई कह कल, तिजारी चौथिया अथरा यही बुखारों के नाम थे। फिर वो बुखार नहीं आवे, हजारों केस हो गए। अब महाराज को बुखार चढ़ने लगा, वो ठीक हो जाए सब, गांव का गांव ठीक हो गया। महाराज को बुखार आने लगा, तब वो राम नारायण शास्त्री आयुर्वेद भवन डाबर और आयुर्वेद भवन दो भारत के बड़े वो देसी दवाखाने थे उस समय। आयुर्वेद भवन के निर्माता रामनारायण शास्त्री बराबर कार लेके पहुंचे वहां जंगल में, तमाम दवाइयां रख जाए, दो चार वैद साथ में रहे, डॉक्टर साथ में रहे। बोले महाराज आपका लीवर खराब हो गया है, आपको ये बीमारी है, ये इस तरीके से ले लेना, साल भर बाद आवे तो दवाई ज्यों की त्यों रखी रहे, ऊपर गर्दा पड़ा रहे। बोले अरे महाराज आपकी और हालत बिगड़ गई, दवाई ज्यों की त्यों है, फिर बदल के। बोले महाराज जरूर ले ले, ये प्राणदा है, प्राण दान करता है, आप जरूर ले, थोड़ी सी दवाई गर्म है, आप दूध ले ले इसके साथ, जंगल में दूध कहाँ मिले। इतने में एक अहिर आया और गुरु महाराज से एक दो बीघा तीन बीघा की दूर पर एक अत्री महाराज का मंदिर, उसके बाजू में सट के झोपड़ी बना ली और गाय रखा करे, बाड़ा बना के चराया करे 20-30 गाय। तो बोले उसके पास दूध होना चाहिए, भगवान मना करे तुम दवा मत खाना, इसलिए नहीं। अब बैद जी के हम वचन दिए हैं तो एक दो दिन खा ली तो बैद का मन रह जाए, इससे हमको ठीक होना होना नहीं, भोग दंड है, चलो शायद हो के पास तो ले ले। भीख मांगना तो महाराज को आता नहीं था, गए वहीर के पास, करे गाय रखे हैं? बोले हाँ महाराज। दूध होता है? बोले हाँ महाराज होता है, 3.5 किलो। करे अध पौवा खांड दी है मुखे दवाई खाए का? बोले सब आपी का महाराज, सब ले लो, लेकिन हम दूध सब द्रौपदी बाई को दे देते हैं, और बदले में वो रोटी बना देती है तो हमारा समय बच जाता है, हम गाय देखा करते जिससे शेर चीता न खा जाए, हमारा समय बच जाता है। थोड़ा सा द्रौपदी बाई से आप पूछ लें फिर ले लें। अब महाराज कौन सी द्रौपदी बाई से पूछे, बोले ठीक। महाराज नीचे नीचे चले आए, वापस लौट गए और द्रौपदी बाई ऊपर से देखत रही कि महाराज परमहंस जी इधर जा रहे हैं। इतनी ऊपर है द्रौपदी बाई जितना ही मकान है, ऊपर से फन 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 गई और यादव से पूछा परमहंस जी आए रे, बोले हाँ। का पूछत रहे, ऐसे ही दूध के लिए उन्हें जरूरत है, आध पाव पौवा खान, तुमने क्या कहा ऐसा कहा। तो फिर दौड़ के आई महाराज के बराबर में खड़ी हो गई ऊपर, परमहंस जी दंडवत कहाँ गए थे, बोले ऐसे ही, कोई बात हो तो बताओ, बोले कुछ हो नहीं। महाराज के ससुरी पूछ के आई तब वो पूछे चली जाते, हाँ जस जस पूछे महाराज के वैसे ही हमारे दिमाग गनगनाए। तो फिर बोले कोई बात हो तो बताओ, बोले कुछ हो नहीं। बोले आओ अनुसुईया जी के दर्शन तो कर लो, बोले नहीं करे काहे, देवी देवताओं के दर्शन नहीं करते हो, भजन किसका करते हो, तो नंगे तो रहते ही रहे। वो दिन संयोग से एक गमछा टाइप बारीक मलमल का कपड़वा लपेटे रहे, कपड़वा खोल के इंद्री की ओर इशारा करके हम एकर भजन करत हूं, इंद्री दिखाए गए चुड़ैल पीछे पड़ गई है, एकर भजन करत हूं हम, एकर भजन करत हूं। और दिया बिगड़े बड़ी जोर से भागी फन 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 फन, असद असद फिर महाराज चले गए। अरे महापुरुष किसका भजन करते, इंद्रिय संयम नहीं मनो निग्रह नहीं तो काई साधु है, और कौन भजन करे तेरी। ठीक है कहा महाराज ने, चले गए महाराज। तो अपन बोले पूछ के आई, वो के भाव होता दूर लाके भेंट कर देती, वो परीक्षा लेत रही है। महाराज अपने आश्रम बैठ गए, हटाओ ससुरा दूध नहीं चाहिए, नहीं पियेंगे दवाई और क्या। एक घंटा बाद पुजारिया आया, गांव से आया करे उसका पुजारी, गया तो द्रौपदी बाई हंस रही थी, यहां से हंसत हंसत वहां जाए, वहां से लौट लौट वहां जाए, वो मंदिरवा में हंसत हंसत पेट दर्द करने लगा, पेट में सलवट पड़ गया। बोले द्रौपदी भाई आज बहुत खुश हो, क्या बात है। बोले यार परमहंस जी विलक्षण महापुरुष है। तो बोले बात किया, बोले बहुत विलक्षण विचित्र महापुरुष है। तो पुजारिया का मन ने लगे पूजा में, वो भागा भागा आया, बोले महाराज ऐसा कौन दिव्य दर्शन करा दियो, द्रौपदी भाई का तो हसीये नहीं रुकते। तो फिर बोले कहती के कर दर्शन करो, अरे कोई अनादि काल से महापुरुष किसका भजन करता आया है, इंद्रिय संयम करता आया है, भगवान में लो लगाता आया, और केकर भजन कर तेरे, और भजन किस चिड़िया का नाम है। बोले तो हसत हसत उसके पेट में सलोट पड़ गया, हसीये नहीं बंद होते महाराजों को मसे। और बस उस दिन से फिर अनाचित दूध की व्यवस्था होने लगी और सब ठीक। दवाई तो एक और दो दिन पिया, फिर रोग अपने आप ठीक हो गया। ऐसे जंगल में अप्रत्याशित घटनाएं होती रही। जब निरापद हो गया ये अनुसुईया क्षेत्र, तो नव महात्मा आके रहने लगे मैनाहा जंगल में, एक सवा किलोमीटर दूर कुएं के पास। और वो भी अब लेकिन सब मिलके वो जो स्वरूप दास था वो राग द्वेष करके वो उकसाया करे उन लोगों को, अच्छे भी थे उनमें। एक बार स्वरूप दास पगड़ी सगड़ी बांध के करीखा पोत के, द्रौपदी बाई उस दिन दो जने थे, एक माई और थी वो भी पहुंची हुई थी, इसलिए कुछ पावर था। दरवाजा खटखटाया रात को, दो जने थे इसलिए दरवाजा खोल दिया। वो गया तो हमला कर दिया, वो लड़ी कुल्हाड़ी से दोनों जने, लेकिन काफी शोरगुल किया और फिर हाथ मुंह धो के करिखा छुड़ा के झोली में हाथ डाल के माला जपे लगा। वही नौ जने थे उसके बीच में, नौ में से एक वो भी था। द्रौपदी बाई को विश्वास था महाराज के ऊपर, जानते थे कि महापुरुष है। भागी भागी सुबह 4 बजे आई, परमहंस जी महाराज के कौन है रे म्याऊं म्याऊं करते। तो ब्रह्मचारी जी बोले, महाराज द्रौपदी बाई है। बोले करे महारानी, 100 बार मना किया कि रात में मत आया कर। बोले महाराज हमारी कुटिया में कोई घुस गया था, मुंह में काला पोत के पगड़ी बांध के। बोले हमने कहा था ना जंगल में हजारों विघ्न है, माता लोगों को वहां भजन करना चाहिए या तो परिवार के संरक्षण में घर ही में भजन करना चाहिए। मीरा बगेरी जब अवस्था आ गई थी तब बाहर गई, फिर भी ऐसे जंगलों में नहीं जहां भाई बाड़ा है चित्रकूट में वहां करना चाहिए। 1000 बार मना किया फिर भी यहां पड़ी है, यहां विघ्न आ गया तो हम क्या करें, ढूंढ अपन जहां मुलजिम हो तो भाग यहां से। भगा दिया। फिर भागी भागी दुखी आदमी तो कहीं जाता ही, वहां गई तो वही जो खुरापाती था बोले भाई जी तुम वैष्णो संत हम वैष्णो संत, परमहंस जी का नाम लगा दो तो पुलिस इनको ले जाएगी और हम लोग ठाट से भजन करेंगे। वो पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, पुलिस आई, थानेदार आए, वहां से 15-16 किलोमीटर दूर कांतानाथ से। बोले चलिए परमहंस जी। बोले क्या बात है दरोगा जी, वो आपके नाम वारंट है। बोले हरी हमारे नाम और वारंट द्रौपदी बाई जी ने किया है। बोले ओ नारी है कि नारी, फाड़ करेजा खाए तुम चाहो सतलोक को, जमपुर दे पहुंचाए आके पहुंचा ही दिया, ढूंढ ले तो मुलजम जहां वहां पड़े हैं तमाम लोफर। हम सचों के हैं बाबा, हमें छेड़िए तोरे समकर्म हो जाई, ये दरोगाई चूल्हे में चली जाई तोर, भाग यहां से। तू बड़ा लेगर रहा दरोगा, लाला रहे वहां महात्माओं के बीच में रह के उन्हीं से कुछ चूसा किया करता रहा, उसकी आदत रही है। ठाकुर माने इनती बिनती, ब्राह्मण माने खवाए से, लाला माने पाए से, तो कुछ लूटत खात रहा तो लेगर रहा। सोचे महाराजो वैसे हुई है तो। बोले महाराज आप गाय हैं तो हम बछड़ा हैं, आप ये हैं तो हम वो हैं। बोले देख बकवास न कर बेसी, अपन ढूंढ जाओ। गया तो नौ महात्माओं को ले लिया, द्रौपदी बाई को ले लिया। बोले अब तो चलिए महाराज, आपके तो नामजद है। भगवान से पूछा प्रभु क्या बवाल है तुम, तो भगवान ने आदेश दिया चला जा, कोनो कुछ नहीं हुई, चला तो चल कोई बात नहीं, चला जाओ। तो सब तो आगे आगे दरोगा हाँ खतरा, महाराज पीछे से अकेले अपन चल दिए। उनसे काफी बीघा भर दूर अकेले चले जा रहे थे। वहां पथरा गांव के गणेश नंबरदार, वहां के बड़े आदमी थे, पंडित भी वही थे, मंत्र तो 15-25 जाने लगे, उनसे बड़ा पंडित कोई नहीं। वो सुना तो 1000 चांदी का रुपया लेके चला वहां से, बुढ़वा साफी बांध के। बोले जिंदगी बीत गई, एक ही तो महापुरुष थे और वो के साले खल पीछे पड़ गए, लेके चला मैं कितनों लागी में लग गई हूं, उधर से वो चला और द्रौपदी बाई वहां पहुंची थाने में, पागल हो गई थाने के बाजू में, पागल होगी था अंदर नहीं गई बाहर है। कांतानाथ मतलब गांव है, एक बस्ती इसी है, कपड़ा फेंक के नंगी हो गई, नाचने लगी। बोले अरे बाप रे हमें क्या हो गया, परमहंस जी कुछ कर दिया, इन्हीं दहजारों के नाती में से कोई है इन्होंने कहा था कि उनका नाम लगाए दो, तुम बैरागी हम बैरागी, हम लोग ठाट से भजन करेंगे, इसलिए हमने कह दिया था। परमहंस जी निर्दोष है, संत है, हम जब से आए तब से देख रहे हैं वो महापुरुष है, बयाने बदल गया। अब दरोगा जी हक्का बक्का अब दो गांव की औरतें दौड़ दौड़ के उनके कपड़ा पहनावे फाड़ के फेंक दे, चढ़ बैठे चबाले। बाद में तीन चार बार साड़ियां फेंक दिया, तब कहीं उसको फिर लपेट के ले गए, वो चली गई। तो दरोगा जी कहे जाइए महाराज, बोले जाइए तो लेकिन तुम लाया क्यों हमको? बोले महाराज हम लोग दरोगा हैं, पुलिस हैं। उस समय महाराज के यहां दांते में लगा हुआ था दो सोने की, उधर का रिवाज है ये गोरखपुर साइड में, जो बहुत शौक चल रहा था तो दांत में सोना मढ़ दे, दो सीख लगा देते हैं सोने की, आप लोगों के यहाँ है रिवाज? अरे फिर से दांते के जो मुस्कुराते हैं तो दांत की सोनवा चमका करे थे, यहाँ नहीं है क्या? हैं? पहले था अब नहीं तो वही लगा हुआ था। बोले महाराज ये सोना क्यों लगाया? बोले बचपन में शौक रहता है, उस समय लग गया, उससे क्या होता है। महाराज आगे बढ़ गए राजापुर, महाराज को अनुभव में दिखाई पड़ा कि शास्त्रार्थ हो रहा, हमारी विजय हो गई। राजापुर गए तो भयंकर शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ था, कई सौ आदमी बैठा हुए थे। बोले कांतानाथ जब भगवान पहुंचे तो तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वैश सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, और गया प्रणाम किया और फिर गायब हो गया। फिर उसका कोई विवरण नहीं है, न पीछे कोई रिकॉर्ड विवरण है, न आगे कोई विवरण है। ये तपस्वी कौन था? यही शास्त्रार्थ चल रहा था। तो महाराज जब पहुंचे बोले रे अनुसुईया के परमहंस जी आ गए, सबने प्रणाम किया। महाराज बोले देखो किसी के दरवाजे कोई भला आदमी आता है, कोई मेहमान आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, तो घर वाले दस डेग आगे बढ़ के उनको रिसीव करते हैं। तो कांतानाथ तपस्वी का भेष बना के आगे बढ़े और भगवान को निमंत्रण दिए, रिसीव किया और चुपचाप लौट आए। वो कांतानाथ स्वरूप बना गए थे, ताली बज गई। हाँ महाराज यह बात है, तभी तो वहां रुके, ताली बज गई, महाराज की विजय हो गई। और महाराज को पहले दिखाई पड़ा शास्त्रार्थ हो रहा है और हमारी विजय हो गई। वो वास्तव में शास्त्रार्थ चल रहा था, उस समय शास्त्रार्थ का प्रचलन था, वो मोर विजय हो गई। कांतानाथ सजीव हैं, बोले हमारा सजीव तो है। तो वो अपना एक स्वरूप बना के कवि अलिखित, कवि नहीं जानता कि क्या है, कवि अलिखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, प्रार्थना किया, दर्शन किया और चुपचाप आगे बढ़ गया, अदृश्य हो गया। वो भगवान को न्योता देवे गया रहा, महाराज आपका स्वागत आओ रो, तभी तो रामो कुटिया बना के रह गए ठाट से। फिर बाद में ये द्रौपदी बाई जो बची थी, महाराज कहे बेटा वहां चली, जो बाई बाड़ा है चित्रकूट में, वहां माई लोग 30-40 इकट्ठी रहती है, तुम्हें वहीं शोभा है, जंगल में बहन बेटी को रहना शोभा नहीं है, भाग जो। माई लोगों का गलत विचार हो तो खरी खोटी कह दो तो अपने सम्मान में आ जाती है, ठीक है ना। ये महाराज का ये ज्ञान बड़ा तगड़ा रहा, तो उसको जब अपशब्द कह दिया तो आप सम्मान में आ गई। इसके बाद में द्रौपदी बाई फिर गायब हो गई, द्रौपदी बाई से जीव छूट गया। फिर हम जब वहां थे तो एक बार आई थी, हमने भी दर्शन किया। महाराज क्या करे, महारानी तू फिर चली आई तो सबने देखा कि द्रौपदी बाई के है, तो हम देखे बोले हमारी यहाँ बोटल ही रखी रही है। बोले ढूंढ ले जहाँ रखे हो, जहाँ कोठरिया में गए तो वहां पुआर रखा रहा, कोदो का पुआर। कोदवा जो होता है एक धान है, वो कितना झाड़ के निकालो कुछ दाना उसमें रहा आता है। तो एक बंदरे का बच्चा बैठ के चुनत रहा, जहां अंदर गई तो बच्चा बोला ची, तो पचासों बंदर टूट पड़े द्रौपदी बाई के ऊपर, मार नोच के खाए लगे। लोग दौड़े बच्चा ने महाराज के, नहीं बचाओ खाए दे, आई का करे। अब काऊ 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 करके भागी, फिर भागी गई, फिर नहीं दिखाई पड़ी। बोले हजार बार कहा जंगल में नहीं रहकर चाहिए, उससे जू छूट गया। पाप ग्रह खत्म, द्रौपदी बाई खत्म, और उसके बाद में महात्मा लोग निश्चिंत आने लगे, यात्री लोग विधिवत आने जाने लगे। सब तीर्थों में इधर उधर गुप्त गोदावरी वगैरह में डाकू लोग लूटपाट करें, लेकिन गुरु महाराज के आश्रम की लाइन में बिल्कुल लूटपाट नहीं। तो जो डाकू थे वो सब भगत हो गए, क्योंकि कोई मरे लिया किसी को कुछ हुआ तो समझ गए कि महाराज सिद्ध पुरुष है। जो डाका डालने वाले सरदार थे वो साधु हो गए, सेवा में लग गए, अंतरंग सेवक हो गए। तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो कबीर पर बड़ी कमांड थी उनकी, कई 22 चांसलर और बड़े बड़े प्रोफेसर हाथियों में चढ़ के, टट्टू जैसे घोड़ों से बैठ के, यही उपलब्ध था चित्रकूट में। और झूमते हुए पहुंच जाए अनसुईया, पहुंचने तो को पहुंच जाए, लौटने का समय नहीं रह जाए, तो रात्रि रुकना पड़े। रुकने की जगह कहाँ थी सिवाय महाराज के आजू बाजू, उतनी सी जगह बस, वहां से वहां तक बस, और घनघोर जंगल, या महाराज के छत के ऊपर थोड़ी जगह। फालतू लोग आवे महाराज वहां भेज दे, ऊपर बैठो जाओ। तो लोग परिचय दे, महाराज आप डॉक्टर रामकुमार हैं, कबीर पर बड़ी कमांड है आपकी, आप फलाने प्रोफेसर हैं। महाराज के हो, हम जंगल में पड़े कहां पावे, सुनने को हम के कुछ सुनाओ। तो नलनी क्यों कुमलानी, तेरे नाल सरो पानी, कुछ कहे महाराज कुछ नहीं बोले। जब कुछ बोलने लायक हो तब तो बोले, तब समझ जाए कि हमारे उपदेशों में महाराज की कोई रुचि नहीं। तब बोले महाराज हम लोग सुनाने नहीं आए हैं, सुनने आए हैं, आप कुछ बताएं। तो महाराज कह हो का कहें, रहीमन अगम बात कहन सुनन के नाहीं, जिन देखा सो कहा, नहीं कहा सो देखा नहीं। अगम बात कहने सुनने की होती नहीं, जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ही नहीं, कहता उस बेचारे ने देखा नहीं, वो लिखने में नहीं आता, वाणी से कहने में नहीं आता। किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा किसी किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करता है। दो दो पैसे में वेदांत बिकता है, सब पढ़ तो जाते हैं, लिख तो जाते, न जाने ससुरे का पढ़ते हैं का लिखे हैं, लेकिन भजन एक ऐसी वस्तु जो लिखने में आती ही नहीं, न वाणी से कहने में आती है। बोले महाराज फिर भी हम लोगों के लिए कुछ तो कहें, तो एक भजन सुनाया करें। का कहीं कैसे कहीं, को पतियाई फुलवा के छुवत भमर मर जाई। का कहीं वो कहने में नहीं आता, वो वाणी का विषय नहीं है। कैसे कहीं वो अधिकारी के लिए है, यह न कहिए सटही अटसी ले जो मन लाए न सुनहरी ले, वो अधिकारी के लिए है। और वाणी से कहने मात्र से कोई विश्वास भी नहीं कर सकता, उसके लिए प्रमाण चाहिए। पल्ला है क्या फुलवा के छुवत भमर मर जाई। भगवान एक खुशबू है, एक महक है, उसका स्पर्श करते जो मन भंवर है, ये बुन बुन करते 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 जहां उसका स्पर्श किया तो मन सदा के लिए मिट जाता है और परमात्मा ही शेष बच रहता है। मन मिटा माया मिट्टी हंसा बेपरवाह जाका कछुन चाहिए सोई सहंसा है। तो वो बेटा अनुभव गम्य वाणी का विषय नहीं है, भजन करो स्तर उठता जाएगा समझते जाओगे, वो अनुभव गम्य है। फिर ये पूरा भजन सुना दिया करे, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके ओम राम शिव एक नाम का जाप कर सुबह शाम 5 मिनट हमारा रूपुआ देख लिया कर कहीं रहो। जिस दिन 2 मिनट में स्वरूप हमारा घर बैठे बैठे देख लोगे, जिसका नाम भजन है, यहाँ बैठे बैठे दे दूंगा तुम घर बैठे बैठे पा जाओगे। एक बार मंदाकिनी गंगा में इतनी बाढ़ आई कि धुने के 6 इंच पास तक आ गई। ये चबूतरा है और उससे 6 इंच नीचे है, उतनी बाढ़ कभी नहीं आई थी। तो महाराज खड़े हो गए, करे भगवान ने हमको यहां बैठाया है, आदेश दिया कि यहां बैठ, तूने जन्म भर यहीं रहना है, यही तो हर जगह है। कब न हमारा धुना बुता दे। तो लोगों ने कहा भगवान शास्त्र में लिखा है कि संतों का चरण छूने से गंगा पवित्र होती है, तो ये आपका चरण छूने आई है। तो बोले चरण छूने आई है, मैं चरण न डरी हूं गंगा में, हमार पुण्य ले ले, सबका पाप ले थे, हमारे पास पाप है ही नहीं तो पुण्य ले ले। इतने में बड़ी जोर से बोछाल आई, एक छपाक देना सिर के बराबर बोछाल उछली गिरी महाराज के चरणों में। बोले महाराज गंगा जी तो चरण छू लिया। बोले छू लिया? बोले हाँ महाराज सब चरण तो धो लिया। तब बोले नारियल ला रे, 20 आना पैसा ला, नारियल ला, बतासा ला, अगरबत्ती जला और गंगा में डाल दिया। बोले ले गंगा माई अब जो। किसी को विश्वास नहीं होगी, एकदम सन 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 बढ़ने वाली गंगा रुक जाए, फिर वहीं रुक गई। 1 घंटा जहां की तरह रुकी रही, लहरें मारती रही और फिर उतरने लगी, उतर गई। तो महापुरुष जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, सिद्धि कुछ नहीं। जो मन से हृदय से जो कामना कर लो भगवान पूरी कर दिया करते हैं। ननुसी आश्रम के ने इधर गांव न इधर गांव नहीं, करीब करीब 8-8 किलोमीटर। तो इधर के लोग अनुसिया होके ही निकला करे रास्ता, पहले सीधे थे लेकिन गुरु महाराज के निवासों उपरांत इधर से जरूर निकला करे। तो उधर पटेलों की बारात थी, कुर्मियों की 16 बैलगाड़ी और जिस बरात में पतुरिया आ जाए तो उसका क्या कहना, वहां का रिवाज था वो बरात सर्वोपरि मानी जाती थी। इस बरात में एक बांदा से अप्सरा को पकड़ लाए तो लोग नहाने के पश्चात गंगा में ऊपर चढ़े, दर्शन करने कोई आ रहा है कोई जा रहा है, दो चार लड़के इकट्ठे होके गए, गुरु महाराज भाई जी आई हैं बांदा से। बोले भाई तुम लोग नाच देखो, हम लोगों के कहां शोभा, देखा तो सफेद बाल है दाढ़ी है, तुम लोगों के शोभा, जाओ भाई जी का डांस देखो, बड़ा अच्छा गाती है महाराज। इतने में टुकुर टुकुर सीढ़िया चढ़ती हुई वो भी चली आई, बोली महाराज हम भी आप ही के बच्चे हैं, एक भजन सुन लिया जाए, और गाना शुरू कर दिया, चोलिया काहे ने धुलाई, ओ सुंदर बांके जोगिया चोलिया काहे ने धुलाई, जन्म जन्म की मैली चोली बिसे दाग परियाई, और बिनु धोए पिया रिजत नाही, जन्म अकारथ जाई चोलिया काहे ने धुलाई, तो राम नाम का साबुन ले ले कृष्ण नाम दरियाई, अपने गुरु को कर ले बरेठा जन्म दाग धुल जाई चुलिया काहे ना धुलाई, ओ सुंदर बंके जोगिया चुलिया काहे ना धुलाई, राशे मैल कटे रग रग के मैसे होत सफाई, धोए जा हर श्वास में मलमल धुलत धुलत धुल जाई चुलिया काहे ना धुलाई। चुलिया धोने का एक तरीका गंगा नहाओ जमुना नहाओ प्रयाग नहाओ, गंगा जमुना खूब नहाने गया न मन का मैल, आठ पहर जूझत ही बीता जस को लोका बैल, चुलिया काहे ना धुलाई, ओ सुंदर बाके जोगिया चुलिया काहे ना धुलाई, गुरु को जब लगी गुरु नहीं माना गुरु आज्ञा नहीं आई, गुरु को जब तक हृदय से गुरु नहीं मान लिया तब तक गुरु की आज्ञा आकाश से अवतरित नहीं होती, गुरु की आज्ञा का प्रसार नहीं मिलता, जबान से तो बराबर सुनते हो, ये गुरु आज्ञा नहीं है, गुरु आज्ञा तब है जब आत्मा से जागृत होकर और तुम्हारे हृदय से आत्मा बोलने लगे, भगवान बताने लगे, भगवान बोलते हैं आत्मा बोलती है गुरु महाराज बोलते हैं, ये पर्यायवाची शब्द है, जब ये जागृति आ जाती है तो आकाश से शून्य से हृदय से पृथ्वी से झड़ती हुई पत्तियों से चलते हुए व्यक्तियों से सर्वत्र से भगवान बोल सकते हैं, इस जागृति का नाम है गुरु आज्ञा। गुरु को जब तक गुरु नहीं माना गुरु आज्ञा नहीं आई, जान लिया जब गुरु स्वरूप को सहज मुक्ति हुई जाई, चुलिया काहे ना धुलाई, गुरु को जान लिया तो जो मुक्ति असाध्य है वो सरल हो जाती सहज हो जाती है बिल्कुल करीब, वो जिसकी चोली निर्मल हो गई, चित्त वृत्ति ही चोलिया है, जिसकी चोलिया निर्मल हो गई अमर लोक के लिए जाई, आत्मा ही अमृत तत्व है, उसे आत्म तत्व के समीप ले जाती है उसके आलोक में ले जाती है, आत्मा के आलोक में प्रवेश दिला देती है, जिसकी चोली निर्मल हो गई अमर लोक के लिए जाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो सदगुरु शरण सुहाई, चोलिया काहे ना धुलाई। इतना बढ़िया भजन सुनाया, हम सोचे हमें याद हो जाए, हम नवाड़ी साधु थे, एक ही लाइन याद हो पाई कि चोलिया काहे ने दुलाई सुंदर बांके जोगिया, राम नाम का साबुन ले ले कृष्ण नाम दरियाई, अपने गुरु को कर ले बरेठा जन्म दाग धुल जाई, चोलिया काहे न धुलाई। महाराज के महाप्रयाण के पश्चात हमने भी पता लगाया कि पूरा भजन कहाँ पर है, तो भदोही के पास एक भगत ढूंढ ढांड के लाया, तब ये भजन पूरा हो पाया। और मतलब ये रत्न कहीं भी मिल सकता है। विवेकानंद जी एक राजा के यहाँ गए, पतुरिया आई तो उठ के दूर चले गए, बाहर निकल गए, लेकिन जब उसने भजन सुनाया तो लौट के चले आए। इन माताओं की परिस्थिति ने उनको पतुरिया बनाया है, लेकिन वो अंदर हृदय से वो भी संत होती हैं। गणिका तर गई, विवेकानंद ने जिससे घृणा किया था वो भी एक भगत देवी निकली। भगवान बुद्ध के सामने आम्रपाली पड़ी, वो जिसके ऊपर पूरा वैशाली लट्टू हो रहा था, जब बुद्ध को देखा तो सब कुछ त्याग के संत हो गए। क्यों? आत्मा तो वही है, परिस्थिति ने किस गड्ढे में हमें किस जीविका में पटक रखा वो बात अलग। और इसके बाद में बरात महाराज के यहां से विदा होके चली गई। महाराज के हो वजनिया बड़ा बढ़िया सुनाया जब चली गई तब। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।